राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 7। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, यहावे का संदेश सुनो, यहावे की प्रतिज्ञा है। कल लगभग इसी समय शमरिया के द्वार पर चांदी के एक सिक्के में 3 किलो मैदा और चांदी के एक सिक्के में 6 किलो जौ बिकने लगेगा। तब उस राजकीय अधिकारी ने, जिसके हाथ की टेक राजा लिया करते थे, परमेश्वर के जन से कहा, यदि खुद यहावे आकाश के झरोके खोल दे तब भी क्या यह संभव है? मगर एलीशा ने उसे उत्तर दिया, यह तुम खुद अपनी आंखों से तो देखोगे, मगर इनको खा नहीं पाओगे। आरामियों का पलायन। उस समय नगर फाटक पर 4 कुष्ठ रोगी थे। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, मृत्यु आने तक हम यहीं क्यों बैठे रहे? यदि हम विचार करें चलो नगर में, तो वहां भयंकर अकाल है, मृत्यु वहां भी तय है। यदि हम यहीं बैठे रहते हैं तब भी मृत्यु तय ही है, इसलिए चलो हम आरामियों के तंबू में चले। यदि वे तरस खाकर हमें जीवन दान दे तो हम जीवित रह जाएंगे, यदि वे हमारी हत्या करना चाहे तो वैसे भी हमारी मृत्यु तो तय है ही। तब शाम होते वे चारों उठे और आरामियों की छावनी की ओर बढ़े। जब वे छावनी की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी ना था। कारण यह था कि यहावे ने ऐसा किया कि आरामी सेना को घोड़ों और रथों की आवाज सुनाई दी गई, मानो एक बड़ी सेना चली आ रही हो। तब आराम के सैनिक आपस में यह विचार करने लगे, सुनो सुनो, इज़राइल के राजा ने हम पर हमला करने के लिए हित्ती और मिस्री राजाओं को भाड़े पर ले लिया है। तब आरामी सैनिक अपने अपने तंबू वैसे ही छोड़कर भाग गए, वे अपने पीछे अपने घोड़े और अपने गधे तक छोड़ गए। जब ये 4 कुष्ठ रोगी शिविर की सीमा तक आए, वे छावनी के भीतर गए और तृप्त होने तक भोजन किया। वे अपने साथ सोना, चांदी और उत्तम वस्त्र भी लेते गए, जिन्हें उन्होंने ले जाकर छिपा दिया। फिर वे लौटकर अन्य छावनी में गए और वहां से भी ऐसा ही सामान ले जाकर छिपा दिया। तब वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हम यह ठीक नहीं कर रहे, आज का दिन शुभ संदेश का दिन है, यदि हम इसको देने के लिए सुबह तक ठहरे रहेंगे तो हम दंड के अधिकारी हो जाएंगे, सो आओ हम जाकर राज परिवार को बता दें। तब उन्होंने जाकर नगर के द्वारपालों को पुकारा और उन्हें सूचित किया, हम आरामियों की छावनी तक गए थे और हमने देखा कि वहां कोई भी सैनिक नहीं है, वहां ना किसी व्यक्ति का स्वर सुनाई दे रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है, सिवाय वहां बंधे हुए घोड़ों, गधों और शांत तंबुओं के। यह सुन द्वारपालों ने ऊंचे स्वर में पुकारा और यह समाचार राजमहल तक पहुंचा दिया। राजा रात में ही उठ गया और अपने सेवकों से कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आरामियों ने हमारे साथ क्या किया है। उन्हें यह मालूम है कि हम भूखे हैं, इसलिए वे छावनी को खाली छोड़ मैदान में जा छिपे हैं। उनका विचार है कि जब हम नगर से बाहर निकलेंगे वे हमें जीवित पकड़कर नगर में ले आएंगे। उनके एक सेवक ने सुझाव दिया, हम बाकी रह गए घोड़ों में से 5 को कुछ सैनिकों के साथ वहां भेज दें। वैसे भी जो सैनिक यहां बचे रह गए हैं उनकी स्थिति उनसे ज्यादा अलग नहीं है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हम इन्हें वहां की स्थिति मालूम करने के लिए भेज दें। तब राजा ने घोड़े जूते 2 रथों को आरामी सेना की स्थिति मालूम करने के लिए भेज दिया। उसका आदेश था, जाकर स्थिति की पता करो। ये दोनों उस मार्ग पर उनके पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने यर्दन तक जाकर देखा कि सारे मार्ग पर वस्त्र और हथियार बिखरे पड़े हैं, जो आरामी उतावली में भागते समय फेंक गए थे। वे भेदिए लौट आए और राजा को इसकी खबर दे दी। यह सुन प्रजा बाहर निकल आई और उन्होंने आरामियों के शिविर को लूट लिया। परिणाम स्वरूप ठीक यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार 3 किलो मैदा चांदी के एक सिक्के में और 6 किलो जौ भी चांदी के एक सिक्के में बिकने लगा। राजा ने उस राजकीय अधिकारी को, वह जिसके हाथ का टेक लेता था, द्वार पर नियुक्त कर रखा था, वह लोगों की इस भगदड़ में द्वार पर ही रौंदा गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक परमेश्वर के जन एलीशा द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार जब राजा ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की थी, यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर के जन ने राजा के लिए यह भविष्यवाणी की थी। लगभग इसी समय कल चांदी के एक सिक्के में 3 किलो मैदा और चांदी के एक सिक्के में 6 किलो जौ शमरिया के फाटक पर बिकने लगेगा। इस अधिकारी ने परमेश्वर के जन पर उत्तर में कटाक्ष किया था, यदि स्वयं यहावे आकाश के झरोखे खोल दे तब भी क्या यह संभव है। इसके उत्तर में परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा था, यह सब तुम स्वयं अपनी आंखों से तो देखोगे मगर इनका इस्तेमाल ना कर सकोगे। उसके साथ ठीक यही हुआ। वह लोगों की भगदड़ में फाटक पर ही रोंदा गया और उसकी मृत्यु हो गई।